ओम शांति। ज्वालामुखी स्थिति द्वारा संस्कार परिवर्तन, हम बाबा के पास आए हैं संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए। उसके लिए हर रोज ज्ञान और योग की पालना हमें मिलती है। हर रोज हम योगाभ्यास करते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि ज्ञान मार्ग में चलते चलते भी कभी कभी विकारों के अंश जीवन में दिखाई देते हैं। थोड़ा रोब आता है, कभी थोड़ा सा लोभ आता है, थोड़ा मोह होता है। तो हर रोज योग का अभ्यास करने के बाद भी संस्कारों में परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो हमें अनुभव नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है साधारण योगाभ्यास से संस्कारों में परिवर्तन उतना नहीं होता है जितना हम चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है ज्वालामुखी योगाभ्यास करना, ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति करना। ज्वालामुखी योग को ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं? जैसे ज्वालामुखी धरती से फटती है, उसमें जो लावा निकलता है उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, उसके संपर्क में कितनी भी कठिन चीज आती है, चाहे लोहा हो चाहे कठिन पत्थर हो, सेकंड में पिघल जाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास में हमारे जो 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, वो कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं और परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसलिए समय की पुकार है ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना। जब भी हम बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले का या नुमा शाम का, उस समय हमने ऐसा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना ही है, ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प हो। तो ज्वालामुखी स्थिति बनाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाना होगा। इस आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने के लिए आवश्यकता है कुछ साहसपूर्ण कदम पश्चात में उठाने की। तो सबसे पहला कदम है ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करने की। जब हम उच्च कोटि की साधना करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यकता है बेहद का वैराग्य अनुभव करना। जब तक इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग अनुभव नहीं होता है तब तक ऐसी शक्तिशाली स्थिति हमें अनुभव नहीं होती है। वैराग्य अर्थात माया दुश्मन से जो हमारा वैर है उसकी आग उसकी अग्नि जब बढ़ती है तो परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता है, प्यार हमारा बढ़ता है। तो जितना बेहद का वैराग्य होता है उतना ही परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता जाता है। और जब परमात्मा से अनुराग बढ़ता है तब हमें ऐसी शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति होती है। इसलिए हमें ऐसा अनुभव करना है, सृष्टि के ग्लोब पर हम खड़े हैं, उसके बाद ऐसी अंदर से आवाज हो कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मुझे घर वापस जाना है, तो धीरे धीरे बेहद का वैराग्य आपको अनुभव होता जाएगा। 5000 वर्षों तक मैंने इस धरती पर बहुत अच्छा पहाड़ बजाया, अभी समय है घर वापस जाने का। तो पहली बात है पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना, क्योंकि बुद्धि योग यहां से हमारा हट जाता है और बाबा के साथ जुट जाता है। जितना हटता है उतना ही जुटता है। इसलिए हमें ये अनुभव करना है, धीरे धीरे बुद्धि का लंगर मेरा इस पुरानी दुनिया से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले राम को याद करने के लिए उपराम स्थिति अनुभव करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ज्वालामुखी स्थिति बनाने के लिए आवश्यक है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना। बहुत गहराई की अर्थात आत्मा में हम बहुत अच्छी तरह से खो जाए। कहते हैं जब तक खुद में नहीं खो सकते हैं तब तक खुदा में भी नहीं खो सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर विधि पूर्वक हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से करना जरूरी है। उसके लिए बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप को स्पष्ट देखें कि मैं हूं देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरा अस्तित्व इस संसार में केवल एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही है। तो स्वयं के स्वरूप को हमें देखना है और उसमें स्थित होने के अभ्यास को बढ़ाना है। लेकिन गहराई की आत्म अनुभूति करना अर्थात आत्मा को देखने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहना हमारा लक्ष्य है। केवल आत्म अभिमानी स्थिति नहीं अनुभव करना है लेकिन संपूर्ण आत्म अभिमानी हमें बनना है, अर्थात 0% देह का भान हो और 100% आत्मा का भान हो, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य की ओर हमारे कदम सदा आगे बढ़ते रहें। तो कहेंगे कि हमारी आत्म अभिमानी स्थिति गहराई से आगे बढ़ रही है और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात केवल मैं साधारण आत्मा हूं इस स्वरूप में हमें नहीं बैठना है योगाभ्यास करते समय, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली बैठक में जब हम बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है और आत्मा रूपी बल्ब जो परमात्मा शक्तियों का पावर हाउस है उनसे अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करता है, परिणाम स्वरूप हमें ऐसा ज्वाला स्वरूप योग अनुभव होने लगता है। तो इसलिए हमें अमृत वेले या नुमा शाम के समय बाबा के सामने बैठते समय बहुत गहराई की स्थिति हमारी हो और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति हमें बढ़ाते रहना जरूरी है, तभी हमें ऐसा सुंदर अनुभव शक्तिशाली अनुभव हो सकता है। दूसरी बात, ऐसे ज्वाला मुखी स्थिति की अनुभूति को बढ़ाने के लिए हमें सदा स्वमान में स्थित रहना होगा, क्योंकि योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां हमें तब होती हैं जब हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर होता है, तो परमात्म मिलन का आनंद कुछ हटकर हमें अनुभव होता है। परमात्म मिलन में हमें बहुत सुंदर अनुभूतियां होने लगती हैं। तो इसलिए मन और बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे से भरपूर हो, योगाभ्यास करना अर्थात दुनिया की सबसे बड़ी जो सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता, उससे मधुर मिलन मनाना। हम मिलन किससे मना रहे हैं? डायरेक्ट भगवान से मधुर मिलन मनाने जा रहे हैं। इसलिए मन बुद्धि एकदम मस्ती में मस्त हो, खुशी में झूमते रहें, तब हमें ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनुभव होने लगते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में स्वमान के सिट पर सेट होकर रहने की। जब हम स्वमान के सिंहासन पर सेट रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारी मन और बुद्धि स्वतः ही ईश्वरीय नशे में झूमने लगती है और हमारी मन की जो वृत्ति है बहुत शांत और शीतल होती है। परिणाम स्वरूप योगाभ्यास में हमें बहुत सुंदर अनुभव होने लगते हैं। तो सारे दिन भर में हमें स्वमान में स्थित रहना है। ये दुश्मन का राज माया का है। सारे दिन भर में माया से हमें सदा स्वयं को सेव भी रखना है और साथ साथ खुशी में झूमते भी रहना है, क्योंकि भगवान की पालना हमें मिल रही है। कोई साधु संत महान आत्मा धर्मात्मा पुण्यात्मा की पालना नहीं मिल रही है, डायरेक्ट भगवान की पालना में हम पल रहे हैं। तो प्रभु पालना में ऐसी सुंदर खुशी नशा हमें अनुभव होते रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, तो रॉयल्टी में सदा रहें, उसके लिए बाबा ने हमें ये सम्मान के सिंहासन दिए। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को दोहराया है, योगाभ्यास में सदा रुचि बरकरार रहें, इसके लिए रमणीकता मेंटेन करते रहें, उसके लिए विभिन्न स्वमान के टाइटल को स्मृति में रखें और उसको हम अनुभव करते रहें। तो बाबा के रॉयल बच्चे हैं, तो टाइटल रूपी टाई पहनकर ही हमें सेवा के क्षेत्र में रहना है। जो बड़े लोग होते हैं वो ऑफिस में जाते हैं तो टाई पहन के जाते हैं, जैसे टाई पहनते चेहरा बदल जाता है, टाई उतारते हैं चेहरा ऑर्डिनरी होता है। तो हमें क्या करना है, टाइटल समान का टाइटल रूपी टाई पहनकर ही सेवा के क्षेत्र में उतरना है और बहुत ईश्वरीय नशे की खुमारी अनुभव करते जाना है, तो माया की बीमारी भी आपको नहीं होगी और बहुत सुंदर योग के अनुभव आपको होते रहेंगे। तीसरी बात है, ज्वाला मुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाना। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात हमें परम धाम में बाबा के पास बहुत समीप बैठना है। कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं मुझ आत्मा के मन में कभी कभी ऐसे अशुद्ध संकल्प चलते हैं, मुझ आत्मा पर अपवित्रता के कुछ दाग हैं, पता नहीं मैं बाबा के पास परम धाम में समीप बैठ सकूंगी या नहीं, ऐसा मन कभी कभी खाता है। तो क्या हम बाबा के समीप बैठ सकते हैं या नहीं, बोलिए। मन हिचकिचाएगा नहीं, बाबा पवित्रता का सागर है और हम आत्माओं पर अपवित्रता के दाग हैं, बैठ सकेंगे भाई? हाँ जी, हमें बड़े ठाट से बाबा के पास बैठना है। उसके दो कारण हैं, बाबा ने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के गोदी पर ही नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार होता है। तालियां तो बजाओ जरा। बाबा ने हमें सजनियों के रूप में स्वीकार किया है, सजनी कैसी भी हो उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है, इसलिए परम धाम में बड़े ठाट से बड़े मस्ती से हमें बैठना है, कभी भी हिचकना नहीं है। और बहुत समीप बैठकर बाबा को देखें, बाबा के स्वरूप को देखें कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये बाबा का ही गायन है। किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन एक ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम केवल बाबा का ही गायन है। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर है, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं, तो सबको सत्य स्वरूप में टिकाने वाले हैं। तो ऐसे सत्यता के सागर बाबा को बहुत समीप से देखें। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी, बेहद का कल्याणकारी, परम कल्याणकारी। दुनिया में जितने भी कल्याणकारी हमारे होते हैं वो हद के कल्याणकारी होते हैं। कितना भी समीप का आपका संबंधी होगा, घर में मेहमान दो तीन दिन रहेगा, उसके बाद में पूछेंगे कि भाई वापस जाने की टिकट कब की है, बताओ भाई। दो तीन दिन में ही हम थक जाते हैं, तो मेरा इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला मेरा एक बाप है। कल्याण का वो सागर है, कभी भी कल्याण करते वो थकता नहीं है। सुंदरम अर्थात उनके जैसा सुंदर तीनों जहां में कोई भी नहीं है। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार हैं। कितना सुंदर होगा सोचो तो सही, सुंदरता का वो सागर है। इसलिए जो बहुत सुंदर चीज होती है उसको देखकर दिल भरता ही नहीं है। इसलिए हमारे अंदर से गीत निकले तो सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, तो सूरज मैं सूरज मुखी हूं पिया, ना देखो तुझे तो लागे न ये जिया खिले न जिया, एक पल भी मैं तुझे देखती नहीं हूं तो मेरा जिया लगता नहीं। आप इतने सुंदर हो, तो सुंदरता के सागर बाबा को खूब अच्छी तरह से देखें और जी भर के देखकर अपने नैनों में बिठा दे। जो बहुत प्यारी चीज होती है, कहां बसती है भाई? मां कहती है बेटा मेरा मेरे आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है मेरे आंखों का तारा है। बाबा से बढ़कर कोई प्यारा है क्या? तो बाबा मेरी आंखों का तारा मुझे अनुभव करना है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप बाबा का बहुत नजदीक से देखें कि बाबा की पर्सनालिटी कैसी गजब की है। मन देखो बाबा का कितना सुंदर है, हमेशा बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक संकल्पों की ही क्रिएशन करता है। बुद्धि कैसी है? बहुत विशाल है और दूरंदेशी है। और संस्कार कैसे है? बहुत रॉयल है, बहुत जेंटल है। ऐसी गजब की पर्सनालिटी बाबा की है। बाबा बिंदु हैं, लेकिन सिंधु भी है, सात सागर उस बिंदु में समाये हुए हैं। आप सोचो तो सही कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। हमने केवल बाबा को बाबा के साधारण बनाया, हमें ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बाबा का अनुभव करना है। बाबा बिंदु हैं, लेकिन सात गुणों का वो सिंधु है, सात गुणों का वो सागर है। कितना पावरफुल होगा सोचो तो सही। इसलिए बाबा की पर्सनालिटी को हमें बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज करना है और बहुत अच्छी तरह से देखना है, ठीक है? तो गहराई से देखना है और शक्तिशाली स्वरूप अनुभव करना है। अभी आप देखो तीनों लोगों का वो मास्टर हैं, उसके इशारों पर तीनों लोगों की कारोबार चलती है। कितना वो शक्तिशाली होगा सोचो तो सही। दुनिया में लोग कहते हैं ये जो झाड़ के पत्ते हैं वो भी वो ऊपर वाले के इशारे के अनुसार हिलते हैं, उसके इशारे के बिना ये पत्ता भी नहीं हिल सकता है, दुनिया वाले कहते हैं। क्यों ऐसा कह रहा है दुनिया वालों ने? हम जो आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, उसके इशारे के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। उठा के दिखाओ, नहीं उठा सकते। बाबा ने कहा है मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया हुआ है, जैसा पार्ट मैंने दिया है वही वो बजा रहे हैं। तो कहने का भाव है सारे तीनों लोगों पर उसका राज है, शक्तिशाली हैं, सारे संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करने की क्षमता उनों में है, कितना वो शक्तिशाली होगा भाई, होगा कि नहीं। इसलिए अर्जुन ने कहा, जब साक्षात्कार हुआ भगवान का उनको, तो वर्णन कर रहा था अर्जुन कि परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजों में है। बस 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 करो भगवान, मैं इससे जास्ती आपका स्वरूप अनुभव नहीं कर सकता हूं, सहन नहीं कर सकता हूं। क्यों ऐसा कहा है भाई? वो हमारा बाप है, बाप को अगर हम देख भी नहीं सकेंगे तो उसका प्यार कैसे अनुभव कर सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों कहा अर्जुन ने? इस आसमान में एक सूरज तो क्या, कितने भी सूरज होंगे ना, तो भी उनकी लाइट केवल इस साकारी दुनिया में ही फैलेगी। लेकिन परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं, तीनों लोगों में उनका प्रकाश निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इतनी पावरफुल वो पर्सनालिटी है। तालियां तो बजाओ ना जरा। इतनी परम शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी नजर मेरे पर पड़ी, भाई कितने हम भाग्यशाली हैं, सोचो तो सही जरा। तो एक बार क्या हुआ, मधुबन में ब्रह्मा बाबा जब थे, मुरली चला रहे थे, एक दिन सामने एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, मुरली के बीच में कहती है, बाबा मैं आपसे प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, अभी आप परम धाम से मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुरली चला रहे हैं, क्या इसका मतलब परम धाम में आप नहीं हैं? क्या इसका मतलब परम धाम खाली है? बताओ भाई क्या जवाब होगा? आप दिल्ली से छज्जूपुर से यहाँ आके बैठे तो छज्जूपुर में तो नहीं है ना, आप तो यहाँ बैठे हैं। तो परमात्मा तीनों लोगों के ज्ञान सूर्य हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका प्रकाश तीनों लोगों में सदा प्रवाहित होता रहता है। एक ही साथ बाबा को अनगिनत स्थानों पर जाने की क्षमता है और अनगिनत कार्य करने की क्षमता है। इसलिए लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान जरूर है। तो ऐसे बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना है और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, ठीक है। और पांचवी बात, ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति करने के लिए एकांत वासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एकांत वासी बनना अर्थात एक के ही अंत में खो जाना और पूरी एकाग्रता, एक आग्रहता माना दृढ़ता से, आग्रह से उस परम बिंदु पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना, बिठा देना, मन बुद्धि को बाबा पर बिठा देना, इसका क्या कारण है? ज्वालामुखी योगाभ्यास एकाग्रता के बिना अनुभव नहीं हो सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मेरे हाथ में कागज का टुकड़ा है, सूर्य की गर्मी तेज है, मई का माह चल रहा है, मुझे कागज का टुकड़ा जलाना है, 10 दिन से मैंने कड़क धूप में उसको रखा है, नहीं जल रहा है, क्या करना होगा? मैग्नीफाइंग लेंस लेना होगा और सूर्य की रोशनी में बैठना होगा और कागज के ऊपर उस लेंस को पकड़ना होगा, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो लेंस से जब पास हो जाती हैं तो प्रखर किरणें होती हैं, उनके वो बहुत शक्तिशाली ऊर्जावान होती हैं और ऐसी बीम फोकस वाली ऊर्जावान किरणें जब पूरी एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर एकाग्र होती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती हैं, और वो पेपर अग्नि में सेकंड में भस्म हो जाता है। ऐसे ही हमें स्वयं को आत्मा समझकर ज्ञान सूर्य बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से पूरी एकाग्रता से देखना है। जब दिव्य नेत्र से बाबा को देखते हैं तो ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें बुद्धि रूपी लेंस से जब पास होती हैं तो लेजर किरणें अर्थात शक्तिशाली किरणें वो बनती हैं, और ऐसी शक्तिशाली किरणें पूरी एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं तो योग की ज्वाला धधकने लगती है, और उस योग की ज्वाला में हमारे कठोर संस्कार सेकंड में पिघल जाते हैं। तो इसलिए इस योगाभ्यास में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए हमें बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठना भी जरूरी है। बाबा ने कहा है मेरे साथ कंबाइन होकर बैठो। बाबा हमें अपनी कंपनी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी कभी कंबाइन बैठने का अनुभव होता है, कभी कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई बताओ, कारण क्या है? हम बाबा के साथ परम धाम में कंबाइन होकर बैठना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना जरूरी है? उसके लिए पवित्रता रूपी जो खाद है आत्मा पर उसको मिटाना होगा, और बाबा के प्रति जो प्यार है उसको बढ़ाना होगा, तब हम बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करते रहेंगे। और जब कंबाइंड स्थिति हमारी होती है तो क्या होता है, मेरे हाथ पर जलता हुआ लाल कोयला रखते हैं, मेरा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो ऐसे भगवान के साथ जब हम कंबाइंड होते हैं तो एक तरफ बाबा प्यार के सागर है तो दूसरे तरफ बाबा शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद शक्ति स्वरूप याद में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है, और परिणाम स्वरूप हमें ऐसा ज्वाला स्वरूप योग अनुभव होने लगता है। लेकिन आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। आप कहेंगे भाई हमारा बाबा से तो प्यार है इसलिए तो यहां बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जिगरी प्यार हो मेरे से, हड्डी प्यार हो, जो हमारी दादियों में दिखाई देता था जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, उनके रग रग में केवल परमात्म प्यार ही बसा हुआ था, इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। इसलिए हमें ऐसा प्यार अनुभव करना है, करना चाहते हैं भाई, हैं जी, प्यार को बढ़ाना चाहते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, हम सुदामा की तरह फकीर है, ये एक किराए का मकान लेके बैठे हैं, शरीर रूपी मकान ये भी किराए से लेकर बैठे, क्या है हमारे पास? मुट्ठी चावल अर्थात दिल का प्यार की पूंजी छोटी सी बची हुई हमारे पास है। तो बाबा कहते हैं मैं प्यार का सौदागर हूं, तुम्हारे पास है क्या मैं सौदा करूं? केवल जो प्यार है मैं उसका सौदा करने के लिए आया हूं, और पक्का सौदागर हूं, जितना मुझसे प्यार करोगे उतना ही मैं करूंगा। भाई करना चाहते प्यार बाबा से? लिखो पांच बातें। अगर वो पांच बातें रियलाइज करेंगे तो किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार शेयर ही नहीं करेंगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार हैं। आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। हमने द्वापर युग से बहुत धोखे खाए हैं और बहुत कड़वे अनुभव किए हैं। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कॉम्प्लिकेशन, कितने कंडीशंस है। अगर कंडीशन पूरे नहीं होते हैं तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस संसार में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार ही नहीं करता है। जहां स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। इस सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। केवल परमात्मा ही है जो निस्वार्थ प्यार करते। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितना अंतर है देखो, जमीन आसमान का अंतर है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है। भाई इम्प्योर से प्यार करेंगे तो खुद भी इम्प्योर बनेंगे। इसलिए परमात्मा जो पवित्रता के सागर है, उनसे अगर हम प्यार करेंगे तो स्वयं पवित्र बनते जाएंगे। और पांचवी बात, परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। और ये आत्माओं का प्यार हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। जो टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है ना, वो हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है, बुद्धि के द्वारा परमधाम में निवास करती है। ये थर्ड फ्लोर है, इसमें कुछ नहीं है। ये सारा संसार असार संसार है, नीरस दुनिया है। वो तो सर्व रसों का भंडार है। तो ये पांच बातों को अगर हम रियलाइज करते हैं तो बाबा के तरफ प्यार हमारा स्वतः ही बढ़ता जाएगा और आपको ऐसा ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास अनुभव होता जाएगा। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी संपूर्ण एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करके ज्वालामुखी योग अनुभव किया है। उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है। बताइए कौन सी है भक्ति मार्ग में उसकी यादगार? हम बाबा के बच्चों ने किए हैं, किसी और ने नहीं किया है। हम बाबा ने बच्चों ने किया है यादगार उसके, बताइए। हाँ जी, हाँ, माला जपना, ज्वाला देवी है उसके सुंदर यादगार हैं। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन उन्होंने चाहा उनकी परीक्षा लेना और उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और फिर उन्हों को लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है, जो ब्लैक आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है। तो सब पार्टी को बोले, आया आओ भाई, आपको क्या दिखाई देता है बताओ। हाँ, मुझे वो काली पुतली भी दिखाई दे रही है, आंख भी दिखाई दे रहा है, पंछे भी दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, अर्जुन इधर आओ, क्या दिखाई दे रहा आपको बताओ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो काली पुतली आई बॉल जो पंछी की आंख में है वही मुझे दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा, तीर मारो, लक्ष्य को भेदो। तो उसने तीर मारा और पांच वेद आनर हुआ। तो ये किसकी यादगार है? कोई अर्जुन वर्जुन होकर नहीं गया, सारे अर्जुन यहां बैठे हैं। भाई तालियां भी नहीं बज रही, सारे अर्जुन यहां बैठे हैं। हमने मेहनत की है और लिखने वालों को माल मसाला मिल गया, बताओ हमारे कारण शास्त्रों में। तो कहने का भाव है कि हमने केवल ये रिपीट करना है, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। एकांत में बैठकर एकाग्रता का जो अभ्यास कर रहे हैं वो केवल हमें दोहराना है। तो ऐसा शक्तिशाली ज्वालामुखी योग की अनुभूति आपको बाबा कराएंगे, समझा? तो अभ्यास की बात है। लेकिन क्या हुआ है, मन बुद्धि हमारी द्वापर युग से आवारा की तरह घूमती रही, भटकती रही, और हम उसको एकांत में बैठकर बाबा पर टिकाना चाहते हैं, वो नहीं टिकती है। एक थोड़ी घड़ी के लिए बैठती है और फिर भटक जाती है। इसी सिलसिले में हमारा समय बीत जाता है। तो हमें क्या करना है, बुद्धि को भटकाना बंद करना है, ठाकुर बनकर बुद्धि को एक ठिकाने पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाबा को देखना है और कुछ नहीं करना है। ऑर्डर देना है कमांडर बनके, और मन को भी ऑर्डर देना है, मेरे मन तुम्हें केवल मन मना भव का मंत्र अर्थात बाबा की याद में ही, बाबा के बारे में ही सोचना है। ओके बॉस। तो मन बुद्धि हमारे अपने कंट्रोल में जब रहती हैं, तो ऐसी सुंदर स्थिति हमें अनुभव होती है, ठीक है ना? तो ऐसी वर्तमान समय बाबा का इशारा है, अव्यक्त बाबा का इशारा है कि साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ज्वालामुखी योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत काम करने हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। जो आत्माओं पर दाग विकारों के अंश वंश के लगे हैं, उसको मिटाना है। घर वापस जाने के पहले बेदाग हीरा बनकर जाना है। और तीसरी बात है, शक्तियों का स्टॉक भी हमारे पास जमा करना है, क्योंकि विश्व की अनेक आत्माओं को हमने शक्तियों का दान करना है मनसा सेवा के द्वारा। ये तभी होगा जब हमारे पास शक्तियों का स्टॉक जमा होगा। लेकिन ये सभी काम तभी कर सकते हैं जब हमारा ज्वालामुखी अभ्यास बढ़ता जाएगा। भाई अभ्यास करना चाहते हैं, इसका अनुभव करना चाहते हैं, बोलो अनुभव करना चाहते हैं क्या? बोलो ना, बोलते ही नहीं, इधर के लोग बोलते ही नहीं। पक्की बात? अच्छा, तो भाई जी वो मैं, ओ बाबा, सब खड़े हो जाओ।
रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
सुंदर हम 15 मिनट एकदम शक्तिशाली योग की अनुभूति करेंगे, लेकिन भाई जी ने किसी की फरमाइश है वो बताया कि 5 पॉइंट फिर से बताइए, जो बाबा के से प्यार हमारा हो वो रिपीट करो बोलते हैं। पहली पॉइंट है केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में हमने बहुत धोखे खाए, कभी विश्वास नहीं कर सकते। हमें कितने कड़वे अनुभव द्वापर युग से कहीं का नहीं रखा, माया ने फुटबॉल बना के ऐसा लताड़ा पांचों खिलाड़ियों ने, बात मत पूछो, है ना भाई, थककर बाबा के पास आए हैं। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस है, जब प्यार होता है तो चिट्ठा लिखकर देती है मेरी कंडीशन, जब पूरा नहीं होती है तो कोर्ट के दरवाजे पटकटाते हैं। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, बस सच्चे दिल पर वो ऊपर वाला साहब को राजी करना, केवल दिल में सच्चाई चाहिए। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। कोई चाहता ही नहीं हमारे से, कितना प्यार कर रहा है, सतयुग बना रहा है, सतयुग में भी हमें ही बिठा रहा है राजा महाराजा के सिंहासन पर, बताओ भाई। आत्माओं का प्यार तो गागर है, गागर भी खाली है, वो तो सागर है, है ना भाई, वो भी उछल रही है गागर। पांचवी बात, चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। अभी ये शरीर भी 5 इम्प्योर तत्वों से बना हुआ है, आत्मा में भी इम्प्योरिटी की खाद है, तो इनसे प्यार करेंगे तो हम इम्प्योर बनेंगे ना भाई। तो केवल परमात्मा ही पवित्रता का सागर है और वो हमें पवित्र बनाता है, प्योर बनाता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। तो अभी हम चलो ऐसी पावरफुल योग की अनुभूति करेंगे, सब अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, ऐसा अनुभव करो कि अमृत वेले 4 बजे आप योगाभ्यास करने बैठे हैं। ॐ शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मकान में
मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक, आंखों रूपी खिड़कियों के पास, भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। शक्तियों की किरणें महज शक्तिशाली आत्मा से चारों ओर फैल रही है। निराकारी दुनिया से मैं निराकारी आत्मा इस संसार में आई थी और निराकारी स्वरूप में ही इस संसार से वापस जाऊंगी परमधाम। मेरा असली स्वरूप एक चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता वरदाता और रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। वार्य में वहां मेरा पार्ट इस बेहद ड्रामा में मैं आत्मा हीरो पार्टधारी हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। उनसे मुझे हर रोज श्रीमत के रूप में डायरेक्शन मिलता रहता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी मकान से बाहर निकलकर दिव्य बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने निकली हूं। इस विश्व के गोले से पार, बादलों से भी पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। प्रकाश निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अथाह शक्तियां ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। प्यार के सागर की लहरों में लहराता जा रहा हूं। बाबा के बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में प्रेम के मोती चमक रहे हैं। दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5,000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझे बाप के रूप में तो कभी मुझे टीचर के रूप में अनुभव करो, तो कभी सदगुरु के रूप में तो कभी सखा के रूप में कभी साजन के रूप में अनुभव करते रहो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ये लाल सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। कितना प्यारा है यह मेरा घर परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंस हो ओ, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मस आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की बेहद सुंदर छवि को निहार रही हूँ, जी भर के देख रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ऐसे शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। और योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा सूरज मुखी बनकर ज्ञान सूर्य से पिता को एक टक संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है यह ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव। मस आत्मा में जो खाद थी वो सारी मेल्ट हो चुकी है। मैं आत्मा एकदम कांचन पवित्र अनुभव कर रही हूं, शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूं, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वापस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हो, और इस साकारी शरीर रूपी मकान में विश्व कल्याणकारी समान के सिंहासन पर भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर बैठ चुकी हूं। मोह मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तिशाली किरणें इस ज्ञान सरोवर में चारों ओर फैल रही है और वायुमंडल को वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मज मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है, फैलती जा। Yeah.